प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग तीन, लेक्चर नंबर 150। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य,
ॐ शुद्धात्मने नमः।
नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आययाणं, नमो वज्रायाणं,
नमो लोये सर्वसाम्नम्।
सुरसुरनरपतिवन्द्यने प्रविनष्टघाति कर्मणे प्रणमन करु धर्मकर्ता तीर्थ श्री महावीरने वरिशेषति शङ्करने सिद्ध शुद्धास्तित्वने मुनि ज्ञान दृग चारित्र तप वीर्य चरण संयुक्तने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने वंदुवणि मनुज क्षेत्रे वर्तता अरहंतने अरिहंतने सिद्धने नमस्करण करिये रीते गणधर ने अध्यापको ने सर्वसाधु समूह ने तसु शुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करूं सौम्यनी जेनाति शिव प्राप्ति बने। आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी है तथा जयसेन आचार्य ने तात्पर्यवृत्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से ये तीसरी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 65 पर हम आ गए। 65 यहाँ जो नया पैराग्राफ है वहां से हम शुरू करने वाले। देखो पढ़ते यहाँ पर, सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर। पहले हमने क्या देखा था, प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना विषय को जानती है और स्थूल दृष्टि से देखने से ऐसा लगता है कि हम सबको एक साथ जान रहे हैं, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर सावक्षमिक ज्ञान एक समय में एक ही इंद्रिय के द्वारा प्रवर्तमान होता हुआ स्पष्टतया भासित होता है। यानी हमें समझ में नहीं आता वो बात नहीं, सूक्ष्मता से विचार करने पर देखने पर ये ख्याल में बात आ सकती है। क्षौक्षमिक ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान का उघाड़ है, उसको क्षौक्षम ज्ञान कहेंगे। केवल ज्ञान है वो क्षायिक ज्ञान है, केवल ज्ञान है वो क्षायिक ज्ञान है, ज्ञानावरण का पूर्ण क्षय हो चुका है। क्षौक्षमिक ज्ञान में क्या है, थोड़ा सा आवरण है, थोड़ा सा उघाड़ है। जैसे एक इंद्रियों को एक इंद्रिय संबंधी ही जानने का उघाड़ है, उनको भी क्षौक्षमिक ज्ञान कहेंगे। वो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी है केवल, बाकी उनके लिए रसना इंद्रिय वगैरह के लिए पूरा आवरण है, वो क्षौक्षम नहीं है, वो तो उनका औदयिक अज्ञान कहेंगे हम उसको, उस संबंधी उसको ज्ञान ही नहीं है। हाँ, एक इंद्रिय संबंधी ज्ञान का उघाड़ है और उसमें भी वेरिएशन होगा, किसी को कम उघाड़ है, किसी को अधिक उघाड़ है। ऐसे द्विइंद्रिय वाले के दो इंद्रिय संबंधी, उस संबंधी जानने का उनका ज्ञान का उघाड़, इसको कहेंगे क्षौक्षम। पंचेंद्रियों को भी पांच इंद्रिय, अभी हम संगी पंचेंद्रिय है, पांच इंद्रिय और मन संबंधी जानने संबंधी उघाड़ है। अब उघाड़ में भी हम देखते हैं कोई मति मंद है, पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय है ना, वो भी मनुष्य है तो संगी पंचेंद्रिय, परंतु उसका बुद्धि एकदम कम है। हाँ, या कभी कोमा में जाते तो क्या होता है बुद्धि का, पहले तो इतना बुद्धिमान था ना, अभी क्या हो रहा है उसका, शोपशो में एकदम घट गया उसका, उघाड़ कम हो गया। वहां तो होता है तो जीव की अपनी योग्यता से, पर वहां सामने कर्मों का वैसा क्षोभशम पाया जाता है। तो निमित्त पर आरोप आकर वो कर्म के कारण कहेंगे, कर्म के कारण ऐसा हुआ, कर्म के कारण ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान जीव से हो रहा है। तो यहाँ क्या कहते हैं,
एक एक मिनट।
हाँ
देखो, क्षोभशम जब ज्ञान के अपेक्षा से लगाया जाता है तो उसको क्षोभशम यानी ज्ञान का उघाड़ कितना है। एक इंद्रिय का ज्ञान का उघाड़ सिर्फ एक इंद्रिय वाला है, पंचेंद्रिय वाले का अधिक है, और जो मन सहित पंचेंद्रिय वाला तुम्हारे हमारे जैसा है उसका इसकी सबके कंपैरिजन में ज्ञान का उघाड़ अधिक है, उसको क्षयोपशम ज्ञान कहेंगे। और उधर कर्मों का नाम भी क्षयोपशम ज्ञानावरणीय कर्म ऐसा होता है,
यानी कर्मों ज्ञानावरण का क्षयोपशम।
वहाँ वो क्या है कि जैसे आपको गुजराती आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, कच्छी आती है, लेकिन आप अभी हिंदी में आपका उपयोग लगाए तो बाकी जो ज्ञान है वो थोड़ी भूल गए, वो तो आपके साथ में है लेकिन उपयोग अभी हिंदी जानने में है, तो आपका क्षयक्षम कितना है। कोई लोग है 18 भाषा जानते हैं, ये हमारे क्या नाम है श्रीमद राजचंद्र जी, 100 प्रश्न पूछे उनको तो क्रम से पहले से लेकर आखिर तक के उत्तर देते थे, तो उनका ज्ञान का क्षयक्षम यानी उघाड़ अधिक है। और वो चीटी है उसका कुछ नहीं, ख्याल में वो तो दो इंद्रिय जीव है। इस तरह से हमें ज्ञान का क्षयक्षम और कर्म का भी क्षयक्षम कहते हैं, लेकिन क्षयक्षम वो अन्य इसमें लगता है।
चीटी में क्या तीन इंद्रिय लेना,
तीन इंद्रिय इस तरह से समझना। शब्द वही होगा पर जहां जिस अपेक्षा से उसका उपयोग किया जा रहा है, कर्म के बारे में लगाएंगे तो वो अलग है, और ज्ञान के बारे में लगाएंगे तो उसके ज्ञान का उघाड़ है, इतना समझना। तो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी उघाड़ रूप है और सम्यक दृष्टि का भी है, दोनों को क्षयोपशम ज्ञान है। तो किसी को उपशम ज्ञान होगा कि नहीं? हाँ उमा बेन, मालूम नहीं। अच्छा अच्छा आप, अरे ज्ञान का यानी आवरण का उपशम हो जाए तो ज्ञान बिना जीव हो जाए
ना, केवल ज्ञान हो जाएगा,
केवल ज्ञान हो जाएगा, हो जाए। चलो वो ले लो तुम,
उपशम यानी आवरण उपशमित हुआ ना।
हाँ आवरण,
हाँ केवल ज्ञान,
आवरण उपशमित हो जावे तो उसको केवल ज्ञान हो जाए।
नहीं होता ज्ञानावरण का उपशम नहीं होता कभी। पढ़े आगे 65 पेज नया पैराग्राफ शुरू से फिर पढ़ते। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर क्षौपशमिक ज्ञान एक समय में एक ही इंद्रिय के द्वारा प्रवर्तमान होता हुआ स्पष्टतया भासित होता है, यानी परोक्ष रूप से एक दो को देखे। इस प्रकार इंद्रियां अपने विषयों में भी क्रमशः प्रवर्तमान होने से परोक्षभूत इंद्रिय ज्ञान हेय है। ख्याल में एक हेय क्यों कहा, अपने विषय में भी वो क्रम से प्रवर्तित। लो कहने का तात्पर्य यह है, आहा हा, आपने जो पूछा था ना मिथ्या दृष्टि को भी क्षोभशम होता है, मिथ्या दृष्टि का भी क्षोभशम ज्ञान है और समय दृष्टि का भी क्षोभशम ज्ञान है। तो वो क्षोभशम का नाम क्या, अलग अलग क्षोभशमिक भावों में हम कैसे गिनते हैं उसको लक्ष्मी, क्षोभशमिक ज्ञान कुज्ञान या अज्ञान, क्षोभशमिक अज्ञान। क्षोभशमिक अज्ञान का अर्थ होता है मिथ्या ज्ञान, और क्षोभशमिक ज्ञान का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान, यानी मति श्रुता उदी मन पर्याय, ये क्षोभशमिक ज्ञान कहलाएगी। और मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान यानी कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और विभंग ज्ञान, विभंग ज्ञान, उसको तीन क्षोभशमिक अज्ञान कहते हैं। उसको क्षोभशमिक ज्ञान और क्षोभशमिक अज्ञान ऐसे दो शब्द आते हैं। हाँ चार ज्ञान तीन अज्ञान। चार ज्ञान, हाँ चार ज्ञान और तीन अज्ञान, इस तरह पर सौक्षमिक शब्द लगा दो, सौक्षमिक ज्ञान और सौक्षमिक अज्ञान। अज्ञान का अर्थ है मिथ्या ज्ञान को यहाँ अज्ञान कहा। चौथी लाइन पढ़ेंगे, देखो इंद्रिय ज्ञान भी हेय है तो दयादान व्रत भक्ति का परिणाम तो राग प्रत्यक्ष जहर है। क्या कहना चाहते हैं? ये परलक्षी जो ज्ञान है इंद्रिय ज्ञान उसको भी यहाँ हेय कहा, छोड़ने योग्य कहा। अति इंद्रिय ज्ञान है वो उपाधेय है, तो राग तो और वो तो विकार ही भाव है, वो तो प्रत्यक्ष जहर है। क्या हो दुनिया के सामने यह बात रखनी जगत को कठिन पड़ता है, यानी वो पुण्य को इतना जहर कहने जितना सुनने वाले को भी कठिन पड़ता है। कहते हैं आंख बंद होते ही मरकर कहां चला जाएगा, एक पैसा भी साथ में आने वाला नहीं। श्रोते कहते मुंह में चवन्नी रखी हो वह भी निकाल लेते हैं, रखते हो ऐसे सोना, सोना भी रखते हैं ना, सोने का कोई ऐसा, हाँ अरे नहीं सोना भी रखते हैं, मुंह में सोना रखते हैं सोना। अच्छा वो निकाल लेते कि वैसे जलाते क्या जाए, अभी वो चल चला गया जीव कब का, जब तक वो मुंह में कुछ रखने जाते तो उसके कितने बहु चले चले गए।
ऐसा है महिलाएं स्मशान में नहीं जाती,
अपर्याप्त में गया तो ही हो सकते हैं।
मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। महिलाएं स्मशान में नहीं जाती इसलिए कौन निकल लेता है मालूम नहीं बोलती।
चवन्नी भी निकाल ले, हाँ? और नहीं तो वो जलाने से क्या फायदा है। नहीं नहीं बाकी घर में मरने वाले की बात है, उसमें तो वो तो ड्रेस पहनाते ना तभी वो सब दागिना घर का कपड़ा सब निकाल देते, हॉस्पिटल की बात अलग। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, चवन्नी भी निकाल ले उसकी अर्थी दरवाजे को छूने नहीं देते, दरवाजे में से निकालते हैं ना तो अर्थी को छूने नहीं देते, छू ले और यदि वापस आएगा तो सुना है। पता नहीं गुरुदेव के मुंह से सुन रहे हैं वो नहीं आते नहीं, वो तो ये जो ये कंधे पर उठाते हैं ना उसकी बात है, छूने नहीं देते, छू ले और यदि वापस आएगा तो सुना है। मकान में मर गया हो तो दोनों बाजू अर्थी को छूने नहीं देते, अर्थी यानी वो तो जो ये निकालते तो बाहर से ऐसा बोले कि उसे छूने से ऐसा होता है, लेकिन हेतु यह है कि छू ले और दरवाजे में से वापस आएगा तो रिश्तेदार सब ऐसे है, तू अकेला आया और अकेला जाएगा बापू, आहा हा, और अभी उस समय भी तो अकेला ही है, एकड़े एक ने बगड़े बे, हमेशा अकेला ही था और अकेला ही रहेगा।
दो हो जावे तो
बगड़े बे दो होता ही नहीं मान लेता है, हम एक थे फिर दो हो गए फिर बच्चे हो गए फिर ऐसा हुआ वो सी गुरुदेव कहते ना करोड़िया,
दो हाथ थे चार हाथ
नहीं पहले दो पैर थे, दो पैर थे तो आदमी था, शादी की तो चार पैर वाला इन्हें पशु हो गया, फिर बच्चा हुआ तो करोड़ हो गया, और स्वयं अपना जाल बुनता है और उसे में अटका रहता है। आगे वही बात आई, हमें तो पहले की बात बताई हुई याद आई थी, यहाँ तो पढ़ा नहीं था। देखो देखो वह दृष्टांत दिया है ना, मनुष्य को दो पैर होते हैं तब तक मनुष्य कहा जाता है, स्त्री के साथ शादी करता है तब दो में से चार पैर होते हैं तो पशु हुआ, चार पैर पशु को होते हैं, और संतान होता है तब छह पैर हुए तो छह पैर वाला भंवरा हुआ, अच्छा भंवरा भंवरा भंवरे को छह पैर होते हैं, और उसकी पत्नी हो बच्चे की, तब आठ पैर होते हैं, वो हुआ मकड़ी। मकड़ी यानी वो तो स्पाइडर, करोड़िया। मकड़ी को आठ पैर होते हैं, फिर मकड़ी की भांति ये करूँ, इसका करूँ, इसका करूँ, इसका करूँ, इसका करूँ, लड़के की शादी करूँ, लड़की को ऐसा करूँ, फलाना ऐसा करूँ, फैलाना ऐसा करूँ, आहा हा जीवन चला जा रहा है भाई, आहा हा। हमारे खुशहाल भाई कहते थे, मैंने दीक्षा के लिए कहा मैं तो दीक्षा लूंगा, तो उन्होंने कहा कि आप अकेले रहो, गांव में अपना मकान है वहां रहो, आपको खर्च के लिए पैसे देंगे, आप दुकान पर मत आइए। मेरा छोटा भाई था, 20 वर्ष की उम्र, शरीर एकदम तंदुरुस्त। शादी के 2 साल बाद वह मर गया। कन्या बहुत सुंदर थी। बाद में खुशहाल भाई कहते थे कि अरे रे, मैंने कांजी को तो इजाजत दे दी, यह इजाजत बिना जा रहा है। 2 साल शादी को हुए थे, ऐसा रोग आया, 8 दिन जाओ, आहा हा, अपने आत्मा का कुछ किया नहीं। हाँ, पेज नंबर 66। हाँ, पहले पैराग्राफ की बात हुई अभी हमारी, तो कि अपने आत्मा का कुछ किया नहीं, फिर पशु और ऐसे अवतार में चला जाता है, पशु होता है पशु। श्रोता कहते ऐसा सुनकर भय लगता है, तो भय अच्छा है, इसको भय ही नहीं लगता है ना, बिंदास चल रहा है उसका, एक रूटीन बना लिया उसने। क्या कहते हैं गुरुदेव श्री, भय लगे तो आत्मा में जाए ना, ऐसे कहा है योगिंद्र देव ने कहा है, भव भय थी डरी चित्त। योगिंद्र देव के दोहरे में आता है, जो भव के भय से डरे वह आत्मा की ओर जाए, भव के भय से डरे वह आत्मा के काम पर आए, क्योंकि ये तो बस मैं मनुष्य हूँ, मैं जन्मा हूँ, अभी मेरी इतनी लाइफ है और मुझे ये बातें करनी है, इतना सोच कर ही रह जाता है। तो उसको ख्याल में मैं तो अनादि से हूँ, तो अनादि क्या होता है उसकी बात पता चले, तो इतना काल कहाँ कहाँ गंवाया। तो ये तो प्रत्येक पर्याय में रहने का कुछ निश्चित काल होता है, उत्कृष्ट काल भी, तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे पर्याय में किस तरह से जन्म मरण करते आया है, जब पता चलता है तो उसको रोना आता है, डर लगता है, अरे ऐसा, और अभी भी ऐसा ही बिना आत्मा को पहचाने मर जाए तो ऐसा ही फिर उसका चल ही रहने वाला है। तो कहते ऐसा कुछ डर जाए तो अच्छा है, थोड़ा विचार तो करेगा कि नहीं नहीं मुझे तो इसमें से छूटना है, ये कह रहे। भव के भय का डर नहीं है, अरे यहाँ से कहाँ जाऊंगा बापू, अकेला जाएगा अनजाने क्षेत्र में, देह दूसरा भाव दूसरे, आहा हा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव दूसरे। यहाँ कहते हैं इस प्रकार इंद्रियां अपने विषयों में भी क्रमशः प्रवर्तमान होने से परोक्ष भगवत इंद्रिय ज्ञान ही यह है। अब यह निश्चय करते हैं कि इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। लोगों को तो ऐसा लगे कि यह मकान प्रत्यक्ष देखते हैं, इंद्रिय का निमित्त है तब देखता है, प्रत्यक्ष तो आत्मा के आश्रय से हो वह प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष किसको कहेंगे, डायरेक्ट आत्मा से जानना हो वो प्रत्यक्ष, वहां अक्ष का अर्थ तो आत्मा, अंदर इंद्रिय लक्ष्य में है तब वह इंद्रिय ज्ञान होता है। अब 57 गाथा, ये बीच में ही गाथा लिखी है, कैसे
आगे उसका पूरा है, इधर चालू किया,
यहाँ शुरू किया,
वापिस भी है ना, अभी
नेक्स्ट पेज पर भी है, और यहाँ उसका प्रवचन शुरू किया है। पहले हम वहाँ से पेज नंबर 68 पर आते हैं, बाद में ये प्रवचन पढ़ेंगे, फिर वहाँ गाथाएं और उनकी टीकाएं पढ़कर फिर वापस आएंगे यहाँ पर। अथ इंद्रिय ज्ञानम न प्रत्यक्षम भवति इति निश्चिनोति, ये इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है ये बात यहाँ नक्की करते हैं। पहले गाथा पढ़ेंगे, मिला क्या ताराबेन को,
परदौवं ते अखा नेव सहावोत्ति अपणो बणिला उवलद्धं ते कदम पच्चक्खम अपणो होली परद्रव्यं तान्यक्षाणि
नैव स्वभाव इति आत्मनो भणितानि उपलब्धं तै कथं प्रत्यक्षमात्मनो भवति
ते
इन्द्रियोपरद्रव्य जीवस्वभावभाकिन ते मुनि तेनातिजे उपलब्धते प्रत्यक्षतैते जीवने
अन्वयार्थ देखते हैं तानि अक्षाणि यानी ते इंद्रियो परद्रव्यम परद्रव्य छे मनीषा बेन इंद्रियों को परद्रव्य क्यों कहा बहुत अच्छा वो शरीर का अवयव है शरीर का अंग है वो है ना तो इंद्रियो परद्रव्य छे आत्मनः स्वभाव है इति तेमने आत्माना स्वभाव रूप न एवं भणितानी कही नथी यानी इंद्रिया है वो परद्रव्य है वो आत्मा के स्वभाव रूप नहीं है तैही यानी तेमना वड़े उपलब्धम जनायेलु आत्मनः आत्मा ने प्रत्यक्षम कथम भवती प्रत्यक्ष कई रीते होए क्या कहते हैं इंद्रिया परद्रव्य वो आत्मा के स्वभाव रूप है ही नहीं है उनके द्वारा जो जाना जाता है वो आत्मा को प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है नहीं हो सकता इसी को अभी टीकाकार अमृतचंद्राचार्य कहते हैं जे केवल आत्मा प्रतिज नियत होए ते ज्ञान खरेखर प्रत्यक्ष छे प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है आत्मा प्रतिनियत जो है वो प्रत्यक्ष है आ इंद्रिय ज्ञान तो जे भिन्न अस्तित्व वाली होवा थी परद्रव्यपना ने पामी छे कौन इंद्रिया वो भिन्न अस्तित्व है उनका जीव का अस्तित्व जुदा इंद्रियों का अस्तित्व जुदा इसलिए वो परद्रव्य है अर्थात परद्रव्य रूप छे अने आत्म स्वभावपणा ने जरा पण स्पर्शती नथी अर्थात आत्माना स्वभाव रूप लेश मात्र पण नथी आत्मा का स्वभाव कैसे ज्ञान चैतन्यमय है तो इंद्रिया ज्ञानमय चैतन्यमय है क्या बिल्कुल नहीं एवी इंद्रियों वड़े उपलब्धि करीने एने एवी इंद्रियों ना निमित्त थी पदार्थों ने जानीने जानने वाला आत्मा है परंतु इंद्रियों का निमित्त है वहां पर तो इंद्रियों के इंद्रियों ना निमित्त थी पदार्थों ने जानीने उपजे छे तेथी ते इंद्रिय ज्ञान आत्मा ने प्रत्यक्ष हो ही शके नहीं वो प्रत्यक्ष क्यों नहीं है उसका यहाँ उन्होंने रीजनिंग पूरा कारण बताया आत्मा प्रति नियत होय छे यानी जैसे हम कहते हैं इंद्रिया अपने अपने विषय के नियत है उसका निश्चित है ये आत्मा से ही होता है इस तरह से देखो भावार्थ में लिया उसको आत्मा प्रति नियत का अर्थ क्या लिया जे सीधू आत्मा द्वारा जाने छे ते ज्ञान प्रत्यक्ष छे पेज नंबर है 69 और अभी हम आने वाले 68 पर इंद्रिय ज्ञान तो परद्रव्य रूप इंद्रियों द्वारा जाने छे तेथी ते प्रत्यक्ष नथी ये टीका और भावार्थ यहाँ हुआ हमारा 69 पर अभी 68 की टीका पढ़नी हमको जैसे ना चाहे 68 बीच में है ना संस्कृत अथ इंद्रिय ज्ञानम प्रत्यक्षम न भवती इति व्यवस्थापयते अब यहाँ पर इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है ये यहाँ बता रहे परदव्यम ते अक्खा यानी अक्खा यानी अक्ष यानी इंद्रिया वो क्या है परद्रव्य है तानी प्रसिद्धानी अक्षाणी इंद्रियाणी परद्रव्यम भवंती वो जो प्रसिद्ध जो इंद्रिया है अक्षाणी यानी इंद्रिया जो है वो परद्रव्य होते हैं परद्रव्य है कस्य किसके लिए परद्रव्य है तो आत्मनः आत्मा के वो परद्रव्य नेव सहावोत्ति अपनो भणिदा यो असौ विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव आत्मना संबंधी तत्स्वभावानी निश्चयन न भणितानी इंद्रियानी यानी आत्मा का स्वभाव कैसा है तो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव आत्मा का है परंतु उस स्वभाव वाली ये इंद्रिया नहीं है यानी इंद्रिया वो जो ज्ञान विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाली नहीं है कस्मात क्यों भिन्न अस्तित्व निष्पन्नत्वात्, उनका अस्तित्व भिन्न होने से। पहले भाई बात आई थी, आत्मा का और इंद्रियों का अस्तित्व जुदा जुदा है। इंद्रिया शरीर का अंग है और आत्मा तो चैतन्य वस्तु है, भिन्न है नहीं जुदी। क्या आपका प्रश्न है? आत्मा से भिन्न है।
तो क्या हुआ? अगर
देखो
तो
देख, इसलिए वो परद्रव्य है। हम स्वयं आत्मा है, हम आत्मा है, आत्मा यानी मैं, और ये इंद्रिय हमसे पर है। तो भिन्न निष्पन्नत्व, वो भिन्न होने से, दोनों भिन्न भिन्न ही है ना, वो आत्मा के स्वभाव वाली नहीं है, उसको परद्रव्य कहा। आप कहेंगे आत्मा को परद्रव्य क्यों नहीं कहा? आप इंद्रिया हो तो आत्मा को परद्रव्य कहेंगे। हम आत्मा
हैं
ऐसा उपलब्धम ते ही, उसके द्वारा उपलब्ध है, उसके निमित्त से हुआ ज्ञान। उपलब्धम यानी ज्ञातम, यानी जो ज्ञात हुआ है। यत पंचेंद्रिय विषयभूतम वस्तु तही इंद्रिय, यानी उन इंद्रियों के द्वारा पंचेंद्रियों के विषयभूत जो वस्तुएं ज्ञात हुई है, उपलब्ध हुए ने जानी गई। कदम पच्छक्कम अपनो होदी तद वस्तु, ध नहीं चाहिए, वो चाहिए नीचे, द के नीचे वो चाहिए। तद वस्तु, ध हो जाएगा तो तद हस्तु कहना पड़ेगा, तद वस्तु, द के नीचे वो, तद वस्तु कथम प्रत्यक्षम भवति आत्मनः न कथम अपि, वो वस्तु आत्मा के प्रत्यक्ष कैसे हो सकती है? बिल्कुल किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। तथैव च उसी प्रकार नाना मनोरथ व्याप्ति विषय प्रतिपाद्य प्रतिपादकादि विकल्प जाल रूपम यत मनः तदपि इंद्रिय ज्ञानवत। आपका किसका प्रश्न था, मन की बात क्यों नहीं कही? मनीषा बेन आपने पूछा था, यहाँ जैसेन आचार्य ने उठाए मन को भी। क्या कह रहे देखो, अभी मन को कैसा लिया? नाना मनोरथ व्याप्ति विषय, मन के द्वारा वो मनोरथ चलते हैं ना कुछ कल्पनाएं चलती रहती है नाना प्रकार की, उसमें प्रतिपाद्य प्रतिपादक आदि, प्रतिपादक यानी बताने वाला, प्रतिपाद्य ने जो बताए जाते हैं कहे जाते हैं, विकल्प जाल रूपम यानी वो विकल्प चलते हैं मन के द्वारा, जो विकल्प चल रहे हैं, यत मन हा, ये जो मन है, ये विकल्प जाल रूप जो मन है, तदपि इंद्रिय ज्ञानवत, वह भी इंद्रिय ज्ञान के समान निश्चयेन परोक्षम भवती, वो भी परोक्ष ज्ञान है इंद्रिय के समान, वो भी उसके भी द्वारा जो जो हम जानते हैं वो सारा परोक्ष है। इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, ये परोक्ष ऐसा जाना तो करना क्या, तो किम कर्तव्य, हम क्या करना चाहिए? आपने बताया, हमने माना कि वो इंद्रिय ज्ञान परोक्ष है, ये वस्तुएं सारे परोक्ष जानी गई है, करना क्या? सकल एक अखंड प्रत्यक्ष प्रतिभासमय परम ज्योति कारणभूते स्वशुद्धात्म स्वरूप भावना समुत्पन्न परम अल्हाद, अल्हाद चाहिए, रहा नहीं चाहिए, ल चाहिए, के अंदर ल चाहिए, परम अल्हाद एक लक्षण सुख संवित्ति आकार परिणति रूपे रागादि विकल्प उपाधि रहिते स्व संवेदन ज्ञाने भावना कर्तव्या इति अभिप्राय। देखो क्या कहते हैं, वो परोक्ष है जानकर करना क्या है? तो कहते परम अल्लाह, नीचे से दूसरी लाइन है ना, समुत्पन्न परम आह्लाद हुआ है, आह्लाद चाहिए, ह के अंदर पेट में ल चाहिए, हाँ रू नहीं, हृदय वाला नहीं चाहिए, ल आह्लाद वाला चाहिए। कहते के भावना कर्तव्य है, भावना ने एकाग्रता करने जैसी है। किसमें? स्वसंवेदन ज्ञान है, स्वसंवेदन ज्ञान में एकाग्र होना चाहिए। और वो स्वसंवेदन ज्ञान कैसा, उल्टे चाह रहे हम, वो वाक्य में उल्टे उल्टे पढ़ रहे। रागादि विकल्प उपाधि रहित, स्वसंवेदन ज्ञान कैसा है? रागादि विकल्प की उपाधि से रहित ऐसा जो स्वसंवेदन ज्ञान है उसी में एकाग्र होकर रहना चाहिए। अब ये कैसे कैसी है तो कहते देखो, अभी वो कैसा, वो सकल एक पहले से लेते, सकल एक अखंड, ये किसके बात चल रही है अपनी? आत्मा की। प्रत्यक्ष प्रतिभासमय परम ज्योति कारणभूते, परम ज्योति के कारणभूत ऐसा क्या है? स्वशुद्धात्म स्वरूप भावना समुत्पन्न, स्वशुद्धात्म स्वरूप के भावना से उत्पन्न होने वाला ऐसा जो परम आह्लाद एक लक्षण, सुख संवित्ति आकार परिणति रूपे, सुख संवित्ति ने उसका अतीन्द्रिय सुख का भी यह अनुभव हो रहा है, उस आकार परिणति हो रहे ने उसका अनुभव चल रहा है, ऐसा जो स्वसंवेदन ज्ञान है उसकी भावना कर्तव्य है। यानी वो परोक्ष है, उसका लक्ष्य छोड़कर अपना जो स्वभाव भाव है, स्वसंवेदन ज्ञान है, उस रूप रहना योग्य है। यानी स्वभाव भाव में एकाग्र होना योग्य है। अब फिर उल्टा चलते हैं पीछे के पेज पर, हाँ, क्योंकि गुरुदेव का प्रवचन तो 66 पर शुरू हुआ है। यहाँ जो गाथा और उसके जो गुजराती हरि गीत है ना, उसके नीचे ते इंद्रियो परद्रव्य, अर्थात यह इंद्रिय परद्रव्य पर वस्तु है, न्याय देते हैं, न्याय लॉजिक से सब बातें सिद्ध कर रहे हैं। जो केवल आत्मा के प्रति ही नियत हो वह ज्ञान वास्तव में प्रत्यक्ष है, यानी आत्मा के द्वारा ही जो होता है वही प्रत्यक्ष ज्ञान है। क्या कहते हैं? एक भगवान शुद्ध चिदानंद प्रभु, चित आनंद, चैतन्य और आनंद स्वरूप जो प्रभु, उसके आश्रय से जो ज्ञान हो, यानी उसके लक्ष्य करके जो पर्याय उत्पन्न हुई है उसको कहेंगे उसके आश्रय से जो ज्ञान हुआ, आत्मा के प्रति नियत निश्चय हो वह ज्ञान वास्तव में प्रत्यक्ष है। यानी त्रिकाली जो स्वभाव भाव के लक्ष्य करके जो पर्याय उत्पन्न हुई, जो ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई है, तो वो ज्ञान कैसा है? तो प्रत्यक्ष ज्ञान है। यह इंद्रिय ज्ञान तो जो भिन्न अस्तित्व वाली होने से, इंद्रिया कैसी है? मेरे से जुदी है, भिन्न अस्तित्व वाली है। वो अस्तित्व उनका भी है, मेरा अपने में है, उनका उनमें है, वो तो पौद्गलिक है। तो कहते परद्रव्य है, ये जड़ है और परद्रव्य है, उसका अस्तित्व परद्रव्य है, यह स्वद्रव्य का अस्तित्व नहीं है, आत्मा का वो अस्तित्व नहीं है, है? वास्तव में तो इंद्रिय ज्ञान तो जो भिन्न है ने अपने से भिन्न अस्तित्व वाले है ना, अपने से भिन्न का आत्मा ने मैं और मेरे से वो भिन्न, अर्थात आत्मा की हयाती से, मौजूदगी से भिन्न अस्तित्व वाली होने से परद्रव्यत्व को प्राप्त हुई है, वो परद्रव्य है। और आत्म स्वभावत्व को किंचित मात्र स्पर्श नहीं करती, परद्रव्य है उसका स्वभाव उसमें, मेरा स्वभाव मेरे में, आत्म स्वभाव को तो किंचित भी स्पर्श नहीं करती, क्योंकि उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव जुदा, मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव जुदा। आकाश के एक ही क्षेत्र में है, जहां मैं हूं वहीं पर शरीर की रचना हुई है, और ये इंद्रिया वो शरीर के ही अंग है। यानी जिसको एक क्षेत्राव का ही संबंध होने पर भी हर एक का अस्तित्व जुदा जुदा है, द्रव्य भी जुदा, क्षेत्र भी, काल भी और भाव भी। तो कहते किंचित मात्र स्पर्श नहीं करती इंद्रिया, आत्म स्वभावत्व को किंचित मात्र स्पर्श नहीं करती। तो कहते जन्म से हमारे साथ है, तो जीव काला गोरा कुछ हुआ होगा और इंद्रिया थोड़ा जानने का सीख गई होगी, क्योंकि जीव के साथ है ना, इतने 50-60-70 साल से है, तो इतने जोड़ीदार के साथ रहा तो एक मेक का थोड़ा गुण लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, अकुल को अच्छा तो कहते आत्म स्वभाव रूप किंचित मात्र भी नहीं है। क्या कहते हैं, ये इंद्रिया जो है वे जड़ परद्रव्य है और परद्रव्य है तो परद्रव्य का लक्ष्य करती है। क्या बात है इंद्रिया जड़ परद्रव्य है, परद्रव्य तो परद्रव्य का लक्ष्य करती है, मैंने वो इंद्रिया आत्मा का लक्ष्य नहीं करती परंतु आत्मा ऐसा स्याना है वो स्वद्रव्य होकर भी परद्रव्य का लक्ष्य कर रहा है उसको भी स्वद्रव्य है तो स्वद्रव्य का लक्ष्य करना चाहिए परंतु आत्मा में बिल्कुल इंद्रिय ज्ञान से लक्ष्य नहीं होता, इंद्रिय ज्ञान से लक्ष्य नहीं होते ना, आत्मा इंद्रिय ज्ञान से जाना नहीं जाता, बहुत फेरफार। बाहर में जो लक्ष्य है उसे अंदर में ले जाना है, पर उसको पता ही ऐसा सोच विचार ही नहीं आता कि जानने वाला तो मैं हूं, मैं जुदा हूं, ये शरीर ही मैं हूं और मैं जान रहा हूं, सबको जान रहा हूं, तो बस बाहर ही बाहर उसका लक्ष्य है, उसने कभी सोचा नहीं अपने बारे में। बाहर में जो लक्ष्य है उसे अंदर में ले जाना है, जहां प्रभु विराजते हैं, चैतन्य भगवान अनंत आनंद का नाथ आहा देह देवल में मंदिर में है, उसमें भी आता है ना, मंदिर में देव नहीं तन मंदिर में देव है, योगिंद्र देव में आता है ना, वहां भी है, वह प्रतिमा है, वहां कहां देव है, वह तो प्रतिमा है, देव तो यहाँ अंदर है। क्या कहना चाहते हैं, ये वो प्रतिमा भी वो स्थापना निक्षेप से हमने देव की स्थापना की है वहां पर, ये जो तारण पंथ है ना ऐसे कहते, वो तो प्रतिमा है, वो भगवान नहीं है, वो प्रतिमा है, वो भगवान नहीं, ऐसा कहते हैं वो, इसलिए वो पूजा का भी निषेध करते हैं। अपन स्थापना निक्षेप से पूजा प्रक्षाल वो सब हम करते हैं और करना योग्य भी है ना, तो वो तो कहते प्रतिमा है, प्रतिमा है करके, क्योंकि हम हाँ अभी आजकल तो सुनने लगे शास्त्र स्वाध्याय में आते हैं, पूजा प्रक्षाल भी करते हैं, परंतु ऐसी उनकी मान्यता बीच में इतनी हुई कि तो बिल्कुल निषेध, क्योंकि क्या हुआ था मोहम्मदन जमाने में, यानी मंदिरों पर वो सारे मूर्ति भंग करते ना, मूर्ति को तोड़फोड़ करते थे, तो वहाँ उन्होंने मंदिरों में जो जो नीचे भुयारों में मूर्तियां अंदर रख दी सारी, और वेदी में केवल शास्त्र रखने लगे, और मोहम्मदों को शास्त्र से तो कोई नफरत नहीं थी, उनकी तो मूर्ति से नफरत थी उनको, तो यानी एक दृष्टि से वो किया, यानी वो जो कुछ उन पर संकट आया था उसके हिसाब से वो, पर वो प्रथा ऐसी आगे ही चली। आज भी कितने ही वहां के मंदिर नीचे अगर वो नीचे खोदते हैं तो मूर्तियां निकल रही है, ये छिंदवाड़ा वगैरह परिसर में बहुत सारे होता है, वो पंथ के जो तारण नाम के दिगंबर भावलिंगी संत हो गए थे, बहुत अद्भुत है उनकी वो शास्त्र रचना, इतना अध्यात्म से ओतप्रोत है, तो उनके हिसाब से तो कितने ही अजैन भी जैन हुए थे उस जमाने में, उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों की रचना भी की है, तो अभी वो शास्त्र ही पढ़ते हैं, परंतु जैसे जिसको कहें स्वाध्याय करने वाले कितने रहे हैं, हमारे यहाँ इतने ग्रंथ है कितने लोग स्वाध्याय करते हैं, वैसे वहां पर भी हो गए, रोज सुबह जाते हैं मंदिर में नमस्कार करते हैं, किसको करते हैं शास्त्रों को, और वो शास्त्र क्या है लपेट के रखे है
बंधन में,
बंधन जिसको कहें वो तो वस्त्र में लपेट कर पूरे ऐसे एक के ऊपर एक रखे है। तो हमने पूछा इसमें कौन कौन से शास्त्र है, हम गए थे वहां, हमको बुलाया था प्रवचन के लिए, दोनों गए थे वहां, छह छह घंटे हम वहां बोलते थे डेली, हाँ छह बार गए, हाँ वो होशंगाबाद में छह बार गए, वही तारण पंथियों ने भोपाल में आठ बार बुलाया था, बहुत जगह है ना वो तो। तो हमने बोला कि कुछ भी आप यहाँ लपेट कर रखोगे तो लोगों को क्या पता वहां क्या है, आके नमस्कार करोगे आप, उसमें क्या है, कौन से नाम है, उसमें लिखा क्या है वो पता नहीं है, और बस उनकी पूजा करें, आरती करें, जैसे हम भगवान की कर रहे प्रतिमा की, वो उसके सामने कर रहे, परंतु बिना खोले वो अंदर क्या है वो भी पता नहीं है, बस आए और वहां, ये तो कंडीशन हो गया ना, कंडीशन रिफ्लेक्स कहते हैं जैसा, एक आदत हो गई बचपन से कि उसके प्रति हमारे ऐसे अहोभाव माँ बाप ने सिखाया हमारे भी हो गए, ऐसी बात है तो अद्भुत शास्त्र, पर पता नहीं ना उसमें क्या है, और वहां पर भी द्रव्य गुण पर है कि मालूम नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, और वो लिखा है उनकी भाषा में, वो पुरानी है, अलग भाषा है, वो थोड़ी अलग टाइप है।
क्योंकि घाघर में सागर नाम की पुस्तक हुकमचंद जी ने लिखी है, जो स्वामी जी के प्रवचन है।
हाँ, स्वामी जी ने जो पढ़े थे उनके ग्रंथ,
घाघर में सागर,
वहाँ भी स्वामी जी गए तो पहले ऐसे ही देखा उन्होंने, तो क्या था कुछ मालूम नहीं था, तो ऐसे देखकर आए थे। पर बाद में वो उनके शाह से निकाल कर देखे उसमें क्या है माल, तो कहते हैं कि वहाँ के लोग कहते पूरा साष्टांग नमस्कार किया उन्होंने, यानी जमीन पर लेट के पूरा नमस्कार किया, कि इतने वो तो अद्भुत शास्त्र है उनके। पता नहीं उनको भी अपने शास्त्रों में क्या लिखा है।
और किसी को इंटरेस्ट है तो हमारे पास कुछ पुस्तकें हैं, आप ले जा सकते हैं, पढ़ के वापस देना।
चैतन्य भगवान 67 पेज पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहे, चैतन्य भगवान अनंत आनंद का नाथ, ये तो पढ़ रहे थे ना। हाँ, वो तो प्रतिमा है, प्रतिमा वहां से अपना विषय निकला था, देव तो यहाँ अंदर है। ये बाह्य भगवान से भी हम इस भगवान का दर्शन करेंगे तो हमारा नमस्कार उनको हुआ, सच्चा नमस्कार। शुभवा हो तब भक्ति आदि होती है, देव तो देह में विराजते हैं, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान है और उसको नमस्कार करना है, उसमें लीन होना ही उसमें नमस्कार है। आरती लेकर ऐसा इधर करना नहीं है अपने को, क्योंकि हमें कुछ न कुछ क्रिया करने में कुछ किया ऐसा लगता है। किसकी क्रिया? मेरी शरीर की। इंद्रियों आत्म स्वभाव रूप किंचित मात्र भी नहीं है, ऐसी इंद्रियों के द्वारा उपलब्धि करके ने जानकर, यानी ऐसी इंद्रियों के निमित्त से पदार्थों को जानकर उत्पन्न होता है, इसलिए वह इंद्रिय ज्ञान आत्मा के लिए प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। जो आत्मा के द्वारा डायरेक्ट जो जाना जाता है वो उसके लिए प्रत्यक्ष है। अब इंद्रियों के निमित्त से है तो परद्रव्य है, जड़ है, उसके निमित्त से हुए वो परोक्ष हो जाता है सर। इंद्रिय ज्ञान से आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होता और इंद्रिय ज्ञान से आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान कहने में नहीं आता, दोनों ही ओर से बताया। यानी इंद्रिय ज्ञान के द्वारा आत्मा को प्रत्यक्ष जान नहीं सकते, एक बात, और इंद्रियों के द्वारा आत्मा अन्य पदार्थों का ज्ञान जो है वो भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। जिसे केवली लोकालोक को जानते वो उनका प्रत्यक्ष ज्ञान है, इंद्रियों के द्वारा नहीं जान रहे वो। और जो जीव आत्मानुभवी है वो इंद्रियों के द्वारा अपने आत्मा को भी प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, ये दोनों ओर से बताया। यानी पर पदार्थों का ज्ञान है वो इंद्रियों के द्वारा वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, और आत्मा को जानना है तो इंद्रियों के द्वारा आत्मा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, ये दोनों ओर बताया। प्रत्यक्ष ज्ञान तो भगवान आत्मा अंदर है, उसका आश्रय लेकर पांचों इंद्रियों की ओर का लक्ष्य छोड़कर, ये इंद्रिय जनित आया था ना 31 गाथा, जड़ इंद्रिय भाव इंद्रिय सबको इंद्रिय कहा था वहां समय सार में, जितेंद्रिय की बात आई थी ना वहां, हाँ जितेंद्रिय जन, यानी जड़ इंद्रिय भाव इंद्रिय और इंद्रियों के विषय सबको इंद्रिय कहकर उसका लक्ष्य छुड़ाया था। अभी हम 68-69 की बात हुई थी, लास्ट लाइन 69 की लास्ट लाइन यहाँ से पढ़ेंगे। भावेन्द्रिय ने क्षोभ ज्ञान क्षोभम ज्ञान जो अभी यहाँ बात चल रही है अपनी, क्षोभम ज्ञान को भावेन्द्रिय कहते हैं। हमने तत्वार सूत्र में सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था तारावे? बोला ना अभी इन्होंने, क्या क्या सुना पुराने लब्धि उपयोग भावेन्द्रियम, लब्धि और उपयोग मिलकर दो है ना, इसलिए उपयोग लगाया, द्विवचन लगाया, भावेन्द्रियम, भावेन्द्रिय जो है वो लब्धि और उपयोग मिलकर होता है। क्षोभम ज्ञान
नहीं, वो समझे
नहीं समझे।
देखो मैं बताता हूँ आपको, गुजराती आती है बहन, हिंदी और मारवाड़ी तीनों आते हैं, तीनों ज्ञान है, लेकिन अभी आप हिंदी बोल रही हो तो मारवाड़ी निकल गया क्या? क्या वो ज्ञान है? तो वो लब्धि रूप से है, अभी हमारा उपयोग हिंदी में है। ये बात आप आने के पहले हुई थी, पर आप लोग क्या करते हैं, जब मर्जी है जब आते हैं, मर्जी है तब जाते हैं। तब फिर एक ही बात 10 बार समझाने में भी मजा नहीं आती, लेकिन हमारा ऐसा राग है कि सब लोग समझे, लेकिन बाकी लोग नाराज होते उसका क्या।
हाँ, अभी आगे बढ़ते भी हम लास्ट लाइन 69 पे आपकी लाइन देख लो कहाँ क्या है। टीका, टीका के ऊपर प्रवचन, जो केवल आत्मा के प्रति ही नियत हो वह ज्ञान वास्तव में प्रत्यक्ष है। क्या कहते हैं कि 5 इंद्रिय का लक्ष्य छोड़कर, मन का भी लक्ष्य छोड़कर, आप कहेंगे यहाँ केवल इंद्रिय ही लिखा है, अरे पन समझदार को वो तो इंद्रिय कहने से वो तो, क्योंकि जैसे आचार्य ने लिखा ही था उसमें मन को भी ले लिया उन्होंने, तो 5 इंद्रिय का लक्ष्य छोड़कर आगे क्या लिखा, मन का भी लक्ष्य छोड़कर, और यहाँ ध्यान के नाम पर आत्मा के अनुभव के लिए मन से विकल्प उठाने की कोशिश करता है, जिसको सविकल्प ध्यान कहेंगे। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ऐसा कह रहा है, कह रहे हैं मन ही मन में जो जल्प चल रहे है और मन के द्वारा विकल्प चल रहे हैं, पर ये उसका भी लक्ष्य छोड़कर, क्योंकि अभी ज्ञान किसमें अटका है, विकल्प को जानने में अटका है, हमें विकल्प को नहीं जानना है, हमें आत्मा को जानना है। इसलिए जब तक विकल्प हो रहे हैं तब तक वो आत्मा का लक्ष्य नहीं है, उसको विकल्पों का लक्ष्य हो रहा है, क्योंकि विकल्प आपके ख्याल में आ रहे हैं ना, लोगों को ऐसा लगता है कैसे विकल्प करूं तो आत्मा का अनुभव होगा, तो कहते विकल्प करने से होगा ही नहीं, विकल्प आना वो बात अलग है, परंतु पहले में पहले ये नक्की करो कि विकल्प करते करते आत्मा का अनुभव नहीं होगा। हाँ, क्योंकि मन का भी लक्ष्य छोड़कर, उसका भी लक्ष्य छोड़कर, अतीन्द्रिय ज्ञायक स्वभाव, क्योंकि आत्मा ही अतीन्द्रिय स्वभावी है, पूर्णानंद प्रभु जो आत्मा है उसका आश्रय करके, आश्रय ने उसका लक्ष्य करके, केवल आत्मा के प्रति ही नियत, यानी वो ज्ञान जो इंद्रियों के द्वारा उसका उपयोग इधर उधर इंद्रियों के द्वारा पद पदार्थों की ओर लगा था या मन के विकल्पों की तरफ लग रहा था, वहां से हटाकर आत्मा में ही उसने वो लगाया, तो एक आत्मा शुद्ध चैतन्य, उसके आश्रय से जो ज्ञान होता है, यानी वो पर्याय अपने को जानती हुई प्रकट हुई है ना, ऐसा नहीं पर्याय हो गई है और बाद में उसने आत्मा का लक्ष्य किया, ऐसी बात नहीं है। वो जो पर्याय अपने को ही जानती हुई जो प्रकट होगी वह ज्ञान ज्ञान कहने में आता है, क्योंकि वह अतीन्द्रिय ज्ञान है, अतीन्द्रिय के अतीन्द्रिय स्वभावी आत्मा है, उसके लक्ष्य से जो पर्याय ज्ञान की पर्याय हो रही है वो भी अतीन्द्रिय ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, और उसी को ज्ञान कहने में आता है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान है, दयादान रतभक्ति के जो परिणाम है वे तो धर्म नहीं। देखो ये परिणाम जो है वो तो विभाव भाव है, चारित्र गुण की विभाव पर्याय है ना वो, और ये जो ज्ञान है वो इंद्रिय ज्ञान है, जो परलक्षी ज्ञान है, तो वो परिणाम है वे तो धर्म नहीं, परंतु इंद्रिय ज्ञान से धर्म नहीं, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान से पुद्गल को जानने में आता है, पुद्गल को जानने में निमित्त है, उससे भी धर्म नहीं होगा। इंद्रिय ज्ञान भी दुख रूप है, अभी उसे पराधीन कहेंगे, पराधीन बताए ना, उक्षोपशम के अधीन है, इंद्रियों के अधीन है, बाह्य निमित्त भी है, प्रकाश आदि, कितनी कितनी पराधीनता है उसके अंदर। आत्मा के प्रति भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप, ये कहाँ मिलता है? हाँ मनीषा, अपने पास है कि मैं हूँ? मैं ही हूँ, ख्याल में अपने पास है, मैं मनुष्य हूँ, मेरे पास आत्मा, ऐसा नहीं है। फिर से मैं आत्मा हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। मैं किसमें स्थापित किया हमने? स्वभाव भाव में, पर्याय में अभी आश्रव बंध सब है वहां पर, उसकी बात नहीं हो रही है। तो भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप, उसके आश्रय से जो ज्ञान होता है, ज्ञान होना है ना, वो ज्ञान की पर्याय, हर समय जानना 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 चल रहा है। अभी तक क्या हो रहा था? इंद्रियों के द्वारा ज्ञान हमारा उपयोग पर पदार्थों में जानने में अटका था, या मन के द्वारा विकल्पों में अटका था। अभी वो कैसा है, लक्ष्य किसका करना है? अपना ही लक्ष्य करके जो ज्ञान होगा, इस ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। धर्मी को प्रथम सम्यक दर्शन होता है तब आत्मा का स्व संवेदन ज्ञान होता है। स्व संवेदन अपना ही संवेदन अनुभव में आ जाता है। ज्ञान ज्ञान का ही वेदन करता है, अनुभव करता है। समझ में आया? स्व संवेदन चैतन्य भगवान पूर्ण आनंद और पूर्ण ज्ञान स्वरूप उसका यानी स्व का सम अर्थात प्रत्यक्ष वेदन। सम शब्द सम्यक के अर्थ में भी आता है ना, प्रत्यक्ष वेदन। आनंद के वेदन के साथ जो ज्ञान होता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। यानी आत्मा आनंद स्वरूपी है और उसके लक्ष्य से जो ज्ञान होता है वो आनंद के वेदन के साथ ज्ञान होता है, उसी ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है। केवल आत्मा के प्रति ही यानी मात्र आत्मा को लक्ष्य करके ही वो ज्ञान हुआ है। आत्मा के प्रति नियत है, इसका अर्थ ये बात है। आत्मा के प्रति नियत बताए ना, यानी केवल आत्मा का ही लक्ष्य करके जो उत्पन्न हुआ है। मन संबंधी विकल्पों का लक्ष्य नहीं है, इंद्रियों का लक्ष्य नहीं है। मन नहीं, इंद्रिया नहीं, शुभराग नहीं, एक आत्मा अंदर ज्ञायक स्वरूप चैतन्य मूर्ति प्रभु। आप कहेंगे हम राग बिना कहाँ हुए हैं? अभी राग बिना होने की बात नहीं, उसका लक्ष्य छोड़ दिया है और आत्मा का लक्ष्य करके उत्पन्न हो। वो सारे राग वो अबुद्धिपूर्वक में चले जाए, हमारे ज्ञान का जो गेय हो रहे थे उसको जानने में ज्ञान अटका था, उसका लक्ष्य छोड़कर आत्मा को लक्ष्य करके ये जो ज्ञान हुआ है उसको प्रत्यक्ष कहेंगे। क्या कहे? एक आत्मा अंदर ज्ञायक स्वरूप चैतन्य मूर्ति प्रभु, उसके आश्रय से आत्मा के प्रति ही नियत ही लगाया, यानी केवल आत्मा का लक्ष्य करके उत्पन्न हुआ है। निश्चय सूक्ष्म बात है, उसका नाम प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान है वही ज्ञान है जिसको हम आत्मज्ञान कहेंगे, अतीन्द्रिय ज्ञान कहेंगे, शेष अज्ञान कह देंगे यहाँ पर। यह इंद्रिय ज्ञान तो जो अभी यह इंद्रिया कैसी है, भिन्न अस्तित्व वाली होने से परद्रव्यत्व को प्राप्त हुई है। ये पांच इंद्रिया जो जड़ है और भावेंद्रिय भले हो, वह भिन्न अस्तित्व वाली होने से परद्रव्यत्व को प्राप्त हुई है। यह इंद्रिय तो जड़ मिट्टी परद्रव्य है क्योंकि वह शरीर का अंग है, पौद्गलिक है। तो इंद्रिय ज्ञान परद्रव्य से होता है, इसलिए परद्रव्य से होता है और परद्रव्य का लक्ष्य करता है। हमने पहले भी बताया वो परद्रव्य है और लक्ष्य भी परद्रव्य का है वहां पर। इसलिए वह अपना ज्ञान नहीं, वह सच्चा ज्ञान है ही नहीं। कठिन काम है, कठिन काम है ने लोगों को ये स्वीकार होना कठिन है। कहते इंद्रिय ज्ञान तो जो भिन्न अस्तित्व वाली होने से, भिन्न अस्तित्व किसका? इंद्रियों का। यह इंद्रिय ज्ञान तो भिन्न अस्तित्व जुदा अस्तित्व आत्मा के अस्तित्व से भिन्न है। आत्मा आनंद स्वरूप प्रभु है, उससे तो ये इंद्रियों तो परद्रव्य स्वरूप भिन्न है। इंद्रियों तो है ना, इंद्रिया तो अनेक वचन है ना, इंद्रिया तो परद्रव्य स्वरूप भिन्न है, ऐसा है। ये परद्रव्य स्वरूप जड़ आदि उसका निमित्त होकर जो ज्ञान होता है वह ज्ञान परोक्ष है, खेद खिन्न है, दुख है। यह मार्ग ऐसा है, वीतराग मार्ग, शुभ अशुभ दयादान रत भक्ति पूजा का भाव तो राग है, वह तो धर्म नहीं। परंतु यह ज्ञान की बात हो रही है ना, वो राग की तो बात बिल्कुल, वो तो उसको अधर्म ही, वो तो धर्म है ही नहीं। परंतु इंद्रिय से ज्ञान होता है वह ज्ञान नहीं। दो बातें ली, आत्मा के प्रति नियत हो वह वास्तव यानी प्रत्यक्ष है, वह वास्तव में प्रत्यक्ष ज्ञान है। और इंद्रिय ज्ञान तो जो भिन्न अस्तित्व वाली होने से परद्रव्य स्वरूप को प्राप्त हुई है, कौन? इंद्रिया। वह तो परद्रव्य स्वरूप को प्राप्त करके ज्ञान हुआ, इसलिए वह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं, वह आत्मा के आश्रय से नहीं हुआ है। देखो ज्ञान करने वाला आत्मा है, परंतु वो आत्मा स्वयं के आश्रय से ये ज्ञान नहीं हुआ, ये कह रहे। इंद्रिय से शास्त्र आदि का ज्ञान सुनने में आया, वह भी परद्रव्य के निमित्त से हुआ। इंद्रिय का ज्ञान परोक्ष है, वह भी सच्चा ज्ञान नहीं, इसलिए आगम ज्ञान को भी परोक्ष ज्ञान में डाला है, आपको मालूम होगा। अनादिकाल में 11 अंग का ज्ञान हुआ, अनंत बार जैन साधु हुआ, दिगंबर साधु हुआ, 11 अंग पढ़े, लेकिन वह सब इंद्रिय ज्ञान है। शास्त्र ज्ञान है ना, बाह्य लक्ष्य से, शास्त्र के लक्ष्य से ज्ञान किया है, परंतु जो पढ़ा है उसमें तो स्व का लक्ष्य कभी नहीं किया, केवल इंद्रिय ज्ञान में रुक गया है, वह आत्मज्ञान नहीं। आत्मज्ञान में तो साथ में आनंद आता है, अतीन्द्रिय आनंद। लोग पूछते हैं हमको, ये तो टीवी देखने में भी आनंद आता है, परद्रव्य को जानते हुए भी आनंद आता है, क्या कहते हैं, लड्डू का भी आनंद आता है। अच्छा, तो ये कैसा है सारा? इंद्रिय ज्ञान है, काल्पनिक है, माना हुआ है, ऐ तो दुख रूप। आत्मा जो है उसके प्रति नियत करके जो ज्ञान होता है, यानी उसके लक्ष्य से जो ज्ञान हुआ, जिसमें कोई पर पदार्थ की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि आत्मा ज्ञानमय है और वो अपने को जानते हुए वो परिणमित हुआ है। फिर से, उसके अपने वो ज्ञानमय है और परिणमना उसका स्वभाव है, और वो अपने को ही जानते हुए परिणमा है, तो भी उसको किसकी आवश्यकता है? ख्याल में आती ना, ना इंद्रियों की, ना परद्रव्य की, ना प्रकाश की, ना और किसी की। तो कहते कि कोई पर पदार्थ की अपेक्षा नहीं है, इस ज्ञान में तो अतीन्द्रिय आनंद आता है। एक तो जिसको कहने मोस्ट स्वाधीन है, और फिर कैसे अतीन्द्रिय आनंद के साथ वाला है, आनंद ही आनंद है उसमें, फिर भी ये ऐसा दुख मिटाने के लिए परद्रव्यों का लक्ष्य करके परमे से कुछ सुख आएगा, ऐसी उसकी कल्पना है, और उसी के वो इंद्रिय ज्ञान में ही रुका हुआ है, उसी से मेरा कल्याण होगा मानता है। प्रथम दर्जा में, चौथे गुणस्थान में समकीति को अपने आत्मा के आश्रय से जो ज्ञान हुआ, वह ज्ञान आनंद सहित है। और मिथ्या दृष्टि 11 अंग पढ़ डाले तो भी वह शब्द ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान, उसमें आत्मा का कुछ लाभ नहीं है, नुकसान है। कितने जैसे है ना लोग, हमने समय सार पढ़ा, हमने ये पढ़ा, हमने ये पढ़ डाला, हाँ, परंतु वो शब्द ज्ञान हुआ, वहां क्या कहते इसकी क्यूरियोसिटी से वो जानना हुआ, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है, आत्मा को लक्ष्य करके ज्ञान नहीं हुआ है। हाँ, वाचन करके सुनकर जो ज्ञान हुआ, वह इंद्रिय ज्ञान है। भले भगवान की वाणी भी डायरेक्ट क्यों नहीं सुना, समोसरण में जाकर, जब तक वो स्वयं का लक्ष्य करके ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, तब तो वो इंद्रिय ज्ञान में ही डालेंगे और उसको दुखरूप कहेंगे, हेय कहेंगे। आप कहेंगे भगवान की वाणी हेय हो गई, ये हमारा लक्ष्य करना उपादेय है, केवल सुनकर कुछ नहीं, वो तो इंद्रिय ज्ञान में रह जाएगा, ये कह रहे। इंद्रिया परद्रव्य स्वरूप है, ये रुकेंगे हम।
चावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक सदा देत हो।
अरुण।